उसके नाम का जो जप है, उसके स्वरूप का जो ध्यान है, ये ईश्वर प्रणिधान। तो इस प्रकार से भगवान के नाम का जप करने से और ईश्वर के स्वरूप का ध्यान करने से सारे विघ्नों का नाश होकर के और उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। ये महर्षि पतंजलि ने पातंजलि योग दर्शन के पहले पाद के वहां 27-28-29 के सूत्र के वहां ये सब बात कही। तस्य बात के प्रण में तत्जपस तदर्थ भावना, उसका बात की जो ओम है और उसका जप करना, अर्थ की भावना करना, अर्थ समझो कि इस माप के करने का फल बतलाया 29 के श्लोक के बीच के वहां कि वो फिर सब उसके विघ्न नाश हो जाते हैं और वो चेतन शुद्ध आत्मा को प्राप्त हो जाता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि ईश्वर का जो नाम हुआ पुरुष विशेष बतलाया है और उसके जप और ध्यान का महत्व बतलाया है। तो जो परमात्मा को समझो कि समझेगा कि सबसे बढ़कर के सब लोगों का महान ईश्वर समझेगा तो वो फिर परमात्मा को ही भजेगा। जब दूसरी वस्तु को भजता है तो वो परमात्मा को समझो कि महान ईश्वर कहां समझा, और ऐसा समझेगा तो परमात्मा का ज्ञान होकर उसको शांति मिल जाएगी। तुम भगवान गीता की 15वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहते हैं, व्योमामेव संगूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद भक्तिमान सर्वभावेन भारत। यो मामेव संगूढ़ प्राप्त हो जाता हूं। तो भगवान को पुरुषोत्तम जानने से, महेश्वर जानने से, ईश्वरों का भी ईश्वर जानने से, सबसे बढ़कर भगवान है, भगवान से बढ़कर कोई नहीं है, यह बात समझने से उसकी आप पहचान है कि वह फिर मुझको ही भेजेगा तो उसका फल होगा परम शांति की प्राप्ति। रात दिन भगवान का भजन करते करते भगवान की प्राप्ति नहीं होती है, शांति नहीं मिलती है, तो उसका जो भजन है वो कम दामी है, या तो उसमें निरंतरता का दोष है। निरंतरता का दोष है तो भगवान को वो सबसे उत्तम समझा नहीं, सबसे उत्तम समझता तो भगवान को छोड़कर दूसरी वस्तु को भजता नहीं, जब दूसरी वस्तु को भजता है तो भगवान को सबसे उत्तम समझा नहीं। तो सबसे उच्च कोटि का भजन वो है कि जो निरंतर हुए और निष्काम भाव से हुए। यदि किसी कामना को लेकर के पदार्थ को लेकर हम भगवान को भजते हैं तो उस पदार्थ के ही हम दास हैं, भगवान के दास नहीं। उस पदार्थ को ही हम बढ़कर समझते हैं कि जिसके लिए हम भगवान को भजते हैं। भगवान को क्यों भजते हैं? रुपयों के लिए, पुत्र के लिए, धन के लिए। तो वहां पुत्र, स्त्री, धन यही बड़े हुए जिनके लिए हम भगवान को भजते हैं। इस वास्ते भगवान का जो भजन है उसको निरंतर करना चाहिए और निष्काम भाव से करना चाहिए, और भगवान को सर्वोत्तम समझ करके करना चाहिए कि भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। इस प्रकार से श्रद्धा विश्वास कर करके और भगवान का भजन प्रेम से करना चाहिए, और वो भजन गुप्त करना चाहिए, उसकी ढूंढी नहीं पिटवानी चाहिए कि मैं भजन करता हूं। ऐसा भजन करने से उसको प्रत्यक्ष शांति मिलेगी। शांति नहीं मिले तो जरूर समझना चाहिए कि इसमें कोई त्रुटि है हमारी समझने में। भगवान कहते हैं कि मुझको महेश्वर जान करके शांति मिलती है, तो महेश्वर जान कर शांति मिलती है, शांति नहीं मिलती है तो भगवान को हमने महेश्वर कहां समझा। तीसरी बात है कि सूर्य दंसर भूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। मैं सब भूतों का सूर्य दूं या जान करके और शांति ऐसे मिलती है। सूर्य दंसर भूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। सूर्य क्या? कि भगवान सबके सुने और सबके मां साधक भी है ही। मैं जब ये समझता हूं कि भगवान सबके सुहृद हैं तो मेरे भी तो सुहृद है। सुहृद का मतलब यह है कि हेतु रहित दया करने वाले और हेतु रहित प्रेम करने वाले, तो भगवान ऐसे ही हैं, हेतु रहित दया करने वाले, हेतु रहित प्रेम करने वाले। योमत भक्त सभी प्रिय, ऐसा मेरा भक्त मुझको प्यारा है, उसकी भगवान ने प्रशंसा की है, उसको ये अपना प्यारा भक्त गीता में बताया। गीता की 12वीं अध्याय के वहां 13 और 14 के श्लोक को देख, अद्वैष्टास्त्र भूतानां मैत्र करुण एवच निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पित मनो बुद्धिर योमद भक्त सवे प्रिय। यहां कहते हैं योमत भक्त है सभी प्रिय, ऐसा जो मेरा भक्त है वो मुझको प्यारा है। कैसा? कि जिसका किसी के मां भी द्वेष भाव नहीं है, अद्वेष्टा सर्वभूताना मनुष्याना नहीं सर्वभूताना, सारे भूतों में जो द्वेष भाव से रहित है, यानी किसी में भी जिसका द्वेष नहीं है, एक भी प्राणी के मां जिसका बैर नहीं है, क्योंकि भगवान ने घोषणा की कि निर्वैर सर्वभूतेषु यस्य मामेति पांडव, ये पांडव जो सारे भूतों में समझो कि बैर से रहित है वही मुझको प्राप्त होता है, और एक में भी जो बैर है वो भगवान को नहीं प्राप्त होता। वास्तव सूर्यदंग सर्वभूतानाम जो सारे भूतों के मां सूर्य भाव है और द्वेष का अभाव, किसी में द्वेष नहीं, तो द्वेष तो नहीं है, सुरिता की बात तो नहीं कही। बोल देखो, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच सर्वभूतानां सारे भूतों के मां मित्रता यानी प्रेम और दया, हेतु रहित प्रेम हेतु रहित दया। बोले यहां हेतु रहित की बात तो नहीं आई, ये बात जरूर आई कि सारे भूतों के बीच के मां समझो प्रेम, सारे भूतों के ऊपर दया। बोले आगे चलो, निर्ममो निरहंकार, सारे भूतों के बीच के मां द्वेष का तो अभाव और सारे भूतों में दया और प्रेम, किंतु ममता नहीं, ममता ने लेकर करके जो आपने दया होती है प्रेम होता है उसका कोई मूल्य नहीं है। जैसे एक प्रकार से ये मेरा लड़का है, ये मेरी स्त्री है, ये मेरा पिता है, ये मेरा भाई है, अरे उससे वो प्रेम करता है तो सारी दुनिया के लोग ही करते, उसके ऊपर वो दया करता है तो उसका कोई मूल्य नहीं। तो कि निर्ममो, जिसमें लेस मात्र भी किसी चीज में जड़ में चेतन में ममता नहीं, और सब चराचर प्राणियों पर दया है, सब पर सो प्रेम है, सब में प्रेम है, सब पर दया है, और ऐसा होकर के भी जिसके शरीर के मां अहंग भाव नहीं है, केवल ममता का ही अभाव नहीं अहंकार का भी अभाव है, निर्ममो निरहंकार, और सुख और दुख की जो आकर प्राप्ति होती है उसमें समभाव है, भगवान का विधान समझ करके, और हर वक्त सो प्रसन्नचित है, सब में सुसमभाव है, जैसा ही सुख वैसा ही दुख, और क्षमी माने क्षमावान, कोई अपराध कर दे तो उसको अपराध ही नहीं समझ, उसका बदला तो चाहे क्या, वो तो क्षमावान, जिसे भगवान क्षमाशील है ऐसे उसका भक्त, उसका अनुयायी भक्त भी क्षमाशील, जो सच्चा अनुयायी होता है कोई तो भगवान का भक्त होता है, वही भगवान को प्यारा होता है। संतुष्ट है सततंग योगी, ऐसा जो योगी मेरा भक्त है हर वक्त आनंद के वहां मगन रहता है, यथात्मा दृढ़ निश्चय, और जिसने अपने मन को जीत लिया, जिसकी बुद्धि का निश्चय एकदम दृढ़ है, बुद्धि का जो निश्चय है वो एकदम अटल है, परमात्मा के विषय का उनका निश्चय कभी हटता नहीं, एकदम अटल है, और उस निश्चय के अनुसार ही अपने मन से मनन करता है। जब मन वशम है, क्योंकि भगवान कहते हैं मई अर्पित मनोबुद्धि, मेरे में अर्पण कर दिया मन और बुद्धि जिसने, जब मन वशम है तो भगवान में समर्पण करना मामूली बात है, जब बुद्धि का निश्चय एकदम दृढ़ है वही भगवान के एक प्रकार समर्पण है। कि जिसकी बुद्धि भगवान के माही समर्पण है, या जो आदमी अपने मन बुद्धि को भगवान के मां अर्पण कर देता है, कि लगा देता है भगवान के मां, बुद्धि लगा देता है, मन को लगा देता है, तो भगवान कहते हैं ऐसा मेरा भक्त मुझको प्यारा है। तो सूर्य जो पुरुष होते हैं ना, उनमें हेतु रहित दया और प्रेम होता है, तब एक प्रकार से द्वेष कैसे करेगा किससे, और किसी अपराधी को दंड कैसे देगा, क्योंकि वो तो सुरिद है ना। तो सुरिद होने से ये सब भाव उसमें आ जाते हैं, जो पहले श्लोक में जो बतलाए गीता की बाजु झाके 13 के श्लोक में, अद्वेष्टाश्र भूतानां मैत्र करुण एवच निर्ममो निरहंकार है सम दुख है सुख है क्षम। ऐसे पुरुष के लिए भगवान ने कहा कि वो मेरा भक्त मुझको प्यारा है, ऐसा मेरा भक्त मुझको प्यारा। तो भगवान को सुरित जानने से जानने वाला भक्त भी सुरित बन जाता है, जो सुरितता के तत्व को समझ लेता है वही सुरित। और भगवान हेतु रहित दया और प्रेम करने वाले, तुलसीदास जी भी कहते हैं कि देखो कितनी भगवान की दया है कि जिन्होंने बिना ही कारण हम लोगों को मनुष्य का शरीर दिया। कबहू के करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही, जीव जो है 84 लाख योनियों में भ्रमण करता करता जब तंग आ जाता है, तो भगवान इसके ऊपर दया कर करके इसको मनुष्य का शरीर इसको देते। कैसे भगवान है कि हेतु रहित प्रेम करने वाले और हेतु रहित दया करने वाले, ऐसे भगवान इसको मनुष्य का शरीर इसको देते। तो भगवान को सूर्य समझ लेने से, सूर्यता का जो तत्व समझ लेने से वो सूर्य ही बन जाता है, ज्ञान का तत्व समझने से ज्ञानी बन जाता है, और योग का तत्व समझने से योगी बन जाता है, और भक्ति का तत्व समझने से भक्त बन जाता है। तो सूर्यता का तत्व समझने से सूर्य बन जाता है, और भगवान सूर्य है ही, तो भगवान सूर्य है। इस प्रकार भगवान के सूर्य पड़े को जो आदमी समझ जाता है वो सूर्य बन जाता है। भगवान के कर्म सब दिव्य हैं, इस बात को जो समझ लेता है उसके कर्म भी सब दिव्य हो जाते हैं। नवांग कर्माणि निम्पंक्ति, भगवान कहते हैं नमे कर्म फले स्पृहा इति मांग यो भी जानाति कर्म वीर न सबद्धते। भगवान कहते हैं कि कर्मों के द्वारा मैं बंधता नहीं, अर्थात मुझको कर्म बांध नहीं सकते, क्योंकि कर्म के फल की मुझको प्रिया नहीं है, इच्छा नहीं है। इस प्रकार से जो मुझको जान जाता है, अर्थात कि भगवान को कर्मों के फल की इच्छा नहीं है, इसी कारण से कर्म नहीं बांधते हैं, इस प्रकार मुझको न बांधने का जो तत्व समझ जाता है, यार मुझको समझ जाता है का मतलब यही, वो भी कर्मों के द्वारा नहीं है संबंधता है। तो भगवान को सूर्य समझने का मतलब यही है कि भगवान जो सूर्य है इस तत्व को जो समझ जावे वो भी सूर्य बन जावे। तो भगवान निष्प्रिय है, कर्मों के फल की इच्छा नहीं रखते हैं, इस बात इस प्रकार भगवान के तत्व को जो जान जाता है, भगवान ऐसे है ऐसा समझ जाता है, तो वो भी फिर पापों से नहीं बनता। दूसरी बात यह है कि कम से कम भगवान सुलभ है, इस बात को जो आदमी समझ जाएगा तो भगवान की शरण तो हो ही जाएगा, अपना सर्वस्व भगवान के समर्पण तो कर ही देगा, तो फिर उसका कल्याण हो ही जाएगा। इतना भी नहीं तो भगवान एक प्रकार से हेतु रहित तो दया और प्रेम करने वाले हैं, इस माफक जो आदमी समझेगा वो भगवान से जाकर अपनी आत्मा के कल्याण के लिए स्तुति प्रार्थना तो करेगा। नहीं समझे क्या? एक आदमी भूख मरता है और उसको ये मालूम है मैं भिखारी को कि अमुक जगह एक दाता जो सदा भर देता है, तो भूख मरने वाला आदमी में शक्ति होगी तो वहां तो पहुंच ही जाएगा कि भाई मैं भी एक भिखारी हूं। तो भगवान एक प्रकार से सूर्य देव सबका कल्याण करते हैं, सबको शांति देते हैं, तो भगवान के पास में शांति तो मांगेगा, क्यों भगवान तो सब जगह कहीं जाना आना तो पड़ता नहीं, इतना तो कम से कम जरूरी करेगा, नहीं तो फिर क्या समझा। मीठे जल का गंगा जल का लोटा भरा हुआ है, पास में पड़ा है और हम प्यास मरते हैं तो कम से कम इसका ज्ञान होगा कि लोटे में जल भरा हुआ है, तो फिर जल तो पी लेंगे, प्यास लाई मरेंगे, तो समझेंगे कि भगवान सबके सुरित हैं, बिना कारण सबके ऊपर दया प्रेम करने वाले हैं। इस बात को जो जान जाता है वो शांति को प्राप्त हो जाता है, और शांति की इच्छा वाला, शांति का जिज्ञासु शांति को तो प्राप्त कर ही लेगा भगवान से। तो इस प्रकार से भगवान को समझ कर करके और भगवान की स्तुति प्रार्थना मनुष्य कर करके शांति को प्राप्त हो जाता है कि भगवान सूर्य हैं, बड़े दयालु हैं, कैसा भी कोई क्यों नहीं हो, पापी से भी पापी कोई क्यों नहीं हो, उसके ओगणों की तरफ नहीं देखते हैं, वे दीन बंधु हैं और दया के सागर हैं, परम दयालु है, उनका हृदय बड़ा कोमल है, और वे अपने दासों के दोष की तरफ देखते ही नहीं। भरजी ने एक प्रकार से तुलसी रामायण के मां तुलसीदास जी कहते हैं, भरजी के वचन है, जन आवे गुण प्रभु देखन काऊ, दीन बांधु अति मृदुल स्वभाऊ, मन ही मन में कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों के दोष की तरफ नहीं देखते, उनका ऐसा स्वभाव है, वे दिनों के बंधु हैं और उनका स्वभाव बड़ा कोमल है। जो मनुष्य इस प्रकार से समझता है कि भगवान में ये गुण है तो उससे वो लाभ उठा ही देता है। संसार में अब देखते हैं कि कोई दयालु मनुष्य होता है तो याचक जो है एक प्रकार से अपने लाभ उठा लेता है, जब एक मनुष्य जो है उसको जो आदमी दयालु समझता है, प्रेमी समझता है, वो है ऐसा ही सूर्य, तो उससे संसार के मां लोग लाभ उठा लेते हैं, फिर भगवान के समान तो कोई न दयालु नहीं तेजी कोई है ही नहीं भगवान के समान। तो जब इस बात का ज्ञान हो जाता है तो वो भगवान से जरूर लाभ उठाता है, कभी वंचित नहीं रहता। तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी रामायण के मां, उमा राम सम ही तू जग माही। गुरु पी तू मातु बंधु के उनाही। हे उमा, राम के समान हित करने वाला दुनिया में कोई भी नहीं है। गुरु, माता, पिता, बंधु, कोई भी संसार के मां भगवान के समान नहीं है। भगवान के समान तो भगवान ही है। जब मनुष्य इस प्रकार से समझ जाता है कि भगवान के समान कोई भी नहीं है, तो फिर वो सब भाव से भगवान को बसता है। सब भाव क्या कि तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव। हे देव देव, आप ही हमारे माता, आप ही हमारे पिता, आप ही हमारे बंधु, आप ही हमारे सखा, आप ही हमारे धन और आप ही हमारे विद्या। अरे जो कुछ हो तो आप ही हमारे सर्वस्व। ये सर्व भाव, आप ही हमारे माता पिता है, इसमें स्वामी भाव है प्रभु के बीच के मां। आप ही हमारे बंधु और सखा है, ये मैत्री भाव है, सख्य भाव। ये दो ही प्रधान है एक प्रकार से, और दोनों साथ में रह सकते हैं। जैसे अर्जुन के दोनों ही भाव थे, अर्जुन अपने को सखा भी समझते थे और सेवक भी, और भगवान भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि भक्तोषी मेरे सखा चेती, तू मेरा भक्त और सखा है। और जो भगवान की आज्ञा पालन करता है उसको भगवान अपना सखा प्रेमी बतलाए, कोई भी आज्ञा पालन करे। ऋषिकृत रामायण में भी ये बात आई है, सो सेवक प्रियतम मम सोई। मम अनुशासन मान नहीं जोई। सो सेवक, वही मेरा सेवक है। अप्रियतम, प्रियतम है मन अत्यंत प्यारा। एक तो प्यारा होता है उसको प्रिय कहते हैं, और उससे भी और बढ़कर प्यारा होता है उसको प्रियतर कहते हैं। और समझो कि सबसे बढ़कर जो होता है तो उसको कहते हैं प्रियतम। तो प्रियतम एक प्रकार से प्यारा है, अत्यंत प्यारा। तो भगवान कहते हैं कि वह मेरा अत्यंत प्यारा है जो मेरे शासन को मानता है, मेरी आज्ञा का पालन करता है। जब भगवान को सुरिद मान लेता है कि भगवान के समान हमारा कोई हितेशी नहीं है, तो वो फिर भगवान से अलग नहीं रह सकता। उसका भगवान के मां अन्न प्रेम हो जाता है, विशुद्ध प्रेम हो जाता है। क्योंकि जो अपने को सुख देता है उसमें प्रेम होता ही है, अपना जो जिसको हितेशी समझता है उसमें प्रेम होता ही है। और भगवान के समान कोई हितेशी है ही नहीं। जब इस प्रकार का ज्ञान हो जाता है तो भगवान को छोड़कर के उसका किसी में भी प्रेम फिर नहीं रहता। और वास्तविक में भगवान के समान हमारा कोई तीसरी दुनिया में है ही नहीं। और हेतु रहित दया और प्रेम करने वाले हैं। छोटी से छोटी बात की तरफ ख्याल करके देखो कि भगवान जो है सारे भूतों पर कितनी दया कर रखी है, बिना कोई लाग लगाए, बिना कोई कर लिए, सूर्य और चंद्रमा के द्वारा रोशनी दे रहे, जो ऐसी रोशनी उस दुनिया में है ही नहीं। कितनी आप रोशनी करो सूर्य की जैसी रोशनी हो ही नहीं सकती। और बिना ही एक प्रकार से लाग लिए टिक्स लिए बिना ही भगवान हवा देते हैं सब प्राणियों को। इस हवा के सारे समझो कि बिजली से और पंखों से हम लोगों को हवा मिलती है, यदि भगवान इस अपनी हवा को रोक ले हमें तो सब घुट करके मर जाएंगे। तो भगवान की यह कितनी दया। और बिना पैसा लिए भगवान समझो कि वर्षा बरसाते हैं, जैसे सारे भूत प्राणी जीते हैं बिना वर्षा हुए कोई जी भी नहीं सकते, क्योंकि चाहे कितना ही कोई अन्न उपजाए किंतु बहुत दिन नहीं जी सकते बिना वर्षा के बिना। अन्नाद भवंति भूतानि पर्जन्याद अनुसंभव है, माने सारे भूत प्राणी जो है तो अन्न से जीते हैं और उस अन्न की उत्पत्ति पर्जन माने वर्षा से मेघ से होती है। तो इसलिए एक प्रकार से ये कहना उचित ही है कि भगवान हम लोगों को एक बिना किसी पैसा दिए सब चीज देते हैं और रहने के लिए पृथ्वी सारे भूतों को दी। कोई भी मकान है या जंगल है या खेत है तो खेत के वहां चूसों ने बिल कर रखा है बसते हैं तो कहते हैं कि ये हमारा खेत। जो पक्षी घुसवा घाल रखे वृक्षों के ऊपर तो वह कहता है ये हमारा खेत हमारा वृक्ष। और उसका जो मनुष्य जो धनी है वो कहता है कि मेरा खेत है। इसी प्रकार से कोई मकान है तो मकान के मां रहता है वो धनी कहता है ये मेरा मकान। और उसमें जो चींटियां अपने बिल घाल रखा है वो भी वस्ती है वो कहती है कि ये मेरा मकान। और कहीं चिड़िया घोंसला घाल रखा है तो चिड़िया कहती है कि मेरा मकान। तो जो भी जानवर उसमें बसते हैं वो कहते हैं कि मेरा मकान। तो सारी दुनिया के लोग बसते तो चराचर प्राणी मात्र सब इस पृथ्वी के ऊपर ही है। यह पृथ्वी जो भगवान ने दी बिना पैसा लिए दे रही तो कितनी उनकी दया है। आकाश वायु तेज जल पृथ्वी सूर्य चंद्रमा समुद्र आदि कितने पदार्थ एक प्रकार से भगवान ने सब को दिए हैं प्राणी मात्र को बिना किसी पैसा लिए। ये तो साधारण दया। और विशेष भगवान की दया है कि भगवान हम लोगों को मनुष्य का शरीर दिया। यदि मनुष्य का शरीर नहीं देते तो हमारा क्या उपाय था, पशु पक्षी बना देते तो हम पशु पक्षी बन करके इस संसार के वहां भ्रमण करते हुए फिरते। तो ये भगवान की कितनी भारी दया है। मनुष्य का शरीर दे करके फिर भारत भूमि में जो सारे देश को यहां से सदन से शिक्षा मिलती है ये भी भगवान की बड़ी भारी दया। इस देश में हमारा जन्म हुआ और ये बड़ी भारी दया कि उत्तम धर्म में वैदिक सनातन धर्म के मां जन्म की जिसमें जो सिद्धांत है मुक्ति का ऐसा कहीं भी नहीं है। अध्यात्म विषय जैसा एक प्रकार से गीता आदि शास्त्रों में है ऐसा